एक इमेजिनेशन के साथ जुड़ी है। ये इमेजिनेशन है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनमें कुछ बटन्स लगे हुए हैं, स्विचेस लगे हुए हैं, और उन स्विचेस का रिमोट कंट्रोल आपके पास में है, और उस रिमोट कंट्रोल पे ये लिखा भी हुआ है कि कौन सा बटन दबाने से सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से बिहेवियर करेगा। तो कितना अच्छा लगेगा? यस, चाहते तो हम भी सही यही है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सब का रिमोट कंट्रोल हमारे पास में हो। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो स्विचेस होते हैं, ये जो बटन्स होते हैं, ये इनविजिबल होते हैं और ये माइंड के अंदर होते हैं। इन्हें कहा जाता है मेटा प्रोग्राम्स। यस, मेटा प्रोग्राम की मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं। ये मेटा प्रोग्राम होते हैं हर किसी के मोटिवेशनल स्विचेस, इमोशनल स्विचेस, यानी कि जिनकी वजह से व्यक्ति कोई काम करता है। हम भी, हमारे अंदर भी कुछ मेटा प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। ये मेटा प्रोग्राम्स हमारे माइंड की इंटरनल प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से हमें कुछ मोटिवेशन मिलता है किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए या नहीं करने के लिए। और ये प्रोग्राम्स को हम समझ लें अगर, तो किसी भी व्यक्ति को आप उसके मेटा प्रोग्राम के हिसाब से मोटिवेट कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। जानना चाहेंगे क्या होते हैं ये मेटा प्रोग्राम? यस, ये मेटा प्रोग्राम बचपन से लेकर अभी तक हमारे माइंड में धीरे धीरे बन जाते हैं, प्रोग्रामिंग की जाती है, और हमें पता भी नहीं होता। इस प्रोग्राम को जानने के बाद आप खुद के प्रोग्राम को समझिएगा। ये मेटा प्रोग्राम को समझने के बाद अपने माइंड के मेटा प्रोग्राम्स को ढूंढिएगा और ढूंढिएगा कि इस वजह से आप कोई भी काम करते थे या ये वजह थी कि आप ये वाला काम नहीं कर रहे थे। क्या होते हैं मेटा प्रोग्राम, इसको जानने के लिए पहले मेटा प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं। जब आप इन मेटा प्रोग्राम को समझेंगे वन बाय वन तो इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएंगे। पहला मेटा प्रोग्राम होता है पेन एंड गेन, पेन एंड प्लेजर, मूविंग अवे और मूविंग फॉरवर्ड। यानी कि हम में से हर किसी का माइंड इस तरीके से वायर्ड होता है, प्रोग्राम्ड होता है कि हम पेन से दूर भागते हैं और गेन की तरफ जाते हैं। यानी कि हमारा माइंड हमें इस तरीके से प्रोग्राम करता है कि जब भी कोई पेन मिलता है तो हम दूर जाते हैं और जब कोई गेन मिलता है तो उसे पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो मूविंग अवे और मूविंग फॉरवर्ड, ये जो प्रोग्राम है, इसके तहत क्या होता है कि कुछ लोगों की प्रोग्रामिंग इस प्रकार से होती है कि उन्हें पेन से ही मोटिवेशन मिलता है। जब जब उन्हें कोई पेन मिलेगा तब वो आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पेन मोटिवेशन नहीं, डीमोटिवेट कर देता है। ये लोग पेन की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते जब तक इन्हें कोई गेन नहीं मिलता। यानी कि आप अपने आप को रिट्रोग्रेड जाकर देखें, आपने बचपन से लेकर अभी तक जो भी काम किए, पढ़ाई किया, कोई जॉब किया, वो किसी लिए किया? कुछ पाने के लिए किया या कुछ खो ना जाए इस डर से किया? कुछ लोग पेन ओरिएंटेड होते हैं, उनका मस्तिष्क, उसका ब्रेन, उनका माइंड इस तरीके से प्रोग्राम हो चुका होता है या उन्हें प्रोग्राम किया गया होता है बचपन से लेकर अभी तक कि उन्हें जब तक बड़ा कोई पेन नहीं मिलता तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल में, क्लास में, कि जब तक उन्हें डांट नहीं पड़ेगी, जब तक डंडा नहीं पड़ेगा तब तक वो आगे काम, होमवर्क नहीं करके आएंगे या अपना डेली का रूटीन वर्क क्लास में वो नहीं करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अगर डांट दिया जाए, कोई पेन दे दिया जाए, कोई पनिशमेंट मिल जाए तो वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं और होमवर्क भी नहीं करेंगे और वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये वो बच्चे थे जो गेन ओरिएंटेड थे, जो मूविंग फॉरवर्ड वाले इंसान थे। और ऐसे लोग जिन्हें डंडे की जरूरत होती है किसी काम को करने के लिए, वो पेन ओरिएंटेड होते हैं। सोच के देखिए, सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, अभी तक हमने जो भी काम किया वो किस लिए किया? किसी पेन से बचने के लिए या किसी गेन को पाने के लिए? सेम टू सेम अपने आसपास अपने फैमिली मेंबर्स को समझिए वो किस प्रकार से प्रोग्राम्ड हैं, पेन ओरिएंटेड या गेन ओरिएंटेड। और ये मेटा प्रोग्राम आपको लोगों के छोटे छोटे बिहेवियर से लेकर बड़े बड़ी चीजों में झलकेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो गेन ओरिएंटेड होते हैं वो हर चीज में गेन ढूंढते हैं, उन्हें जब तक वो गेन नहीं मिलेगा तब तक उस काम को नहीं करेंगे। और जो पेन ओरिएंटेड होते हैं उन्हें पेन दिखाना पड़ता है तब वो उस काम को करते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी के ऑनर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आपकी टीम में आपको ये समझना बहुत जरूरी हो जाएगा जो आपकी टीम है उसमें कितने लोग पेन ओरिएंटेड हैं, कितने गेन ओरिएंटेड हैं, यानी कि कौन मूविंग अवे वाला इंसान है और कौन मूविंग फॉरवर्ड वाला इंसान। जो पेन ओरिएंटेड होंगे उन्हें आपको कुछ पेन दिखाने होंगे तब वो कुछ काम करेंगे, और जो गेन ओरिएंटेड हैं उन्हें आपको कुछ गेन दिखाने होंगे तब वो कुछ आगे प्रोग्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर ने अपने मार्केटिंग टीम के अंदर इंसेंटिव पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया कि नेक्स्ट मंथ से अगर हमने टारगेट से ऊपर अचीव किया तो हर किसी को 20% इंसेंटिव मिलेगा। तो उस एंटरप्रेन्योर ने देखा टीम के कुछ मेंबर्स मोटिवेट होकर बिजनेस को बढ़ाने भी शुरुआत करने लगे और बिजनेस कुछ बढ़ा। लेकिन उसी एंटरप्रेन्योर ने यह भी देखा कि टीम के सभी सदस्य काम नहीं कर रहे थे, कुछ टीम मेंबर अभी भी मोटिवेट नहीं हुए थे। तो अगले ही महीने फिर उसने एक नया पॉलिसी और लगाया कि अगर टारगेट से इतना परसेंट कम अचीव हुआ तो सबकी सैलरी से 20% रिड्यूस भी किया जाएगा, कम भी दिया जाएगा। और जब ये दोनों पॉलिसी एक साथ लगाई गई कि 20% रिड्यूस भी किया जाएगा अगर टारगेट से इतना परसेंट कम अचीव हुआ और 20% इंसेंटिव मिलेगा अगर टारगेट अचीव हुआ, तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि टीम का हर मेंबर मोटिवेट हो गया और काम करने लगा। क्यों? क्योंकि जो पेन ओरिएंटेड थे वो पनिशमेंट की वजह से कि सैलरी कट ना जाए इसीलिए काम करने लग गए, और जो गेन ओरिएंटेड थे वो इंसेंटिव के लिए करने लग गए। तो इस मॉडल से ये समझने को मिलता है, इस प्रोग्राम से ये समझने को मिलता है कि हर किसी का माइंड या तो पेन के से मोटिवेट होता है या गेन से। और जब आप इस प्रोग्राम को समझ लेंगे तब उसको आप डे टू डे लाइफ में बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं और एक क्लाइंट आपके पास आता है, आपको यह समझना होगा कि वो पेन ओरिएंटेड है या गेन ओरिएंटेड है। और अगर आपने ये समझ लिया तब आप उस प्रोडक्ट के बेनिफिट उसे दिखाएंगे कि इस प्रोडक्ट को लेने से उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में क्या नए नए गेन मिलने वाले हैं, क्या उसे फायदे पहुंचने वाले हैं। और अगर वो पेन ओरिएंटेड है तो उस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को, उस पर्टिकुलर क्लाइंट को वो सारे पेन दिखाने होंगे जब वो इस प्रोडक्ट को नहीं ले रहा होगा, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है। इनफैक्ट आज के इस 21st सेंचुरी में जितनी भी एड्स बनाई जाती हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, वो सब कहीं ना कहीं पेन और गेन मॉडल को यूज करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे या तो आपको गेन दिखाया जाता है या कुछ पेन दिखाया जाता है, और कई बार एडवर्टाइजमेंट को इस तरीके से बनाया जाता है कि और पेन और गेन दोनों एक साथ दिखाए जाते हैं। तो जो लोग पेन के थ्रू प्रोग्रामिंग है वो पेन से मोटिवेट होंगे और जो गेन के थ्रू प्रोग्रामिंग है वो गेन से मोटिवेट होंगे। इस तरीके से ये मॉडल डे टू डे लाइफ में, ये मेटा प्रोग्राम आपकी मदद करेगा आपको समझने में और दूसरों को समझने में। ये पेन गेन मॉडल जो मैंने समझाया केवल यहीं तक सीमित नहीं है, छोटे छोटे एस्पेक्ट से लेकर बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग में भी पेन गेन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नया रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं या किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, पहले आप ये समझ लें किस नए रिलेशनशिप में आप क्यों जाना चाह रहे हैं। क्या आप लोनली फील कर रहे हैं और इस लोनलीनेस से छुटकारा पाना चाहते हैं इसीलिए ये रिलेशनशिप बना रहे हैं, या फिर आप अपने विचारों को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे के साथ। यानी कि अगर आप लोनलीनेस से छुटकारा पाना चाह रहे हैं तो यानी आप किसी न किसी पेन से दूर जाना चाह रहे हैं, इसलिए रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। और अगर आप अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, कुछ गेन पाना चाहते हैं, जब इतनी क्लैरिटी हमको अपने माइंड में आ जाएगी कि कोई भी काम हम क्यों कर रहे हैं, व्हाई आई एम डूइंग दिस, टू अवॉइड एनी पेन और टू गेन एनी गेन, तो शायद ये क्लैरिटी हमें लाइफ में और ज्यादा कॉन्ग्रुएंस क्रिएट करेगी, सहजता क्रिएट करेगी किसी भी डिसीजन को लेने में। अगर एक गाड़ी खरीदने की बात करें, कुछ लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं, अगर एक पेन ओरिएंटेड पर्सन है तो वो गाड़ी में क्या देखेगा, वो ज्यादातर ये चीजें देखेगा, माइलेज कितनी है, कितने साल का इसमें गारंटी पीरियड है, इसका सर्विस स्टेशन पास में है कि नहीं है, ये गाड़ी किस प्रकार से उसको, उसकी जरूरतों को पूरा करेगी। जो गेन ओरिएंटेड है वो ज्यादातर उसकी लुक पे जाएगा कि ये गाड़ी लेने से उसका सोसाइटी में इंप्रेशन क्या होगा, उसको क्या फायदे होंगे, उसका सोशल स्टेटस कैसे बढ़ेगा, लग्जरी कैसी होगी। तो जब इस प्रकार से आप किसी व्यक्ति को समझते हैं तो आप मार्केटिंग में, सेल्स में, हर जगह पर इस मेटा प्रोग्राम को यूज करके सामने वाले को साथ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाकर उसके साथ रेपो क्रिएट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इस पेन गेन मॉडल के। इनफैक्ट मैं यूं कहूं तो रियलिटी ये है कि लाइफ का कोई भी काम हम किसी पेन से बचने के लिए करते हैं, गेन को पाने के लिए करते हैं, लेकिन दोनों ही प्रोग्रामिंग हमारी होती है, लेकिन ज्यादातर टाइम, मैक्सिमम टाइम हम क्या चीज यूज करते हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग है। देखिए, आपने एग्जाम क्यों पास करते थे, पढ़ते क्यों थे, कुछ बड़ा इंसान बनने के लिए, या फिर ये सोचकर कि अगर पढ़ाई नहीं किया तो गरीबी में गुजारा करना पड़ेगा। तो वो डर था जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करता था, या फिर कुछ इंस्पिरेशन थे, कुछ बड़ा बनने की तमन्ना थी, कुछ ड्रीम्स थे जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे। इस तरीके से आप सोचेंगे तो आप अपना प्रोग्राम जान पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनने में बहुत हल्की लग रही है, लेकिन जब आप इसको डीप लेवल पर जाकर समझेंगे तब आपको समझ में आएगा ये पेन और गेन प्रोग्राम हर किसी का होता है, कोई पेन ओरिएंटेड होता है, कोई गेन ओरिएंटेड होता है। और इस पेन और गेन को आप अपना ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं। जब आपको ये समझ में आ जाए कि आप गेन ओरिएंटेड हैं, पेन ओरिएंटेड नहीं, तो आपको अपने माइंड को वर्चुअली फ्यूचर के कुछ गेन दिखाने होंगे उसे मोटिवेट करने के लिए। और अगर आप पेन ओरिएंटेड हैं तो फिर आपका माइंड पेन से प्रोग्राम्ड हुआ पड़ा है, हो चुका है, तब आपको अपने माइंड को पनिशमेंट देनी होगी, पेन दिखाने होंगे, तभी तो वो मोटिवेट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मैंने अपना प्रोग्राम समझा कि मैं गेन ओरिएंटेड पर्सन हूं, मूविंग फॉरवर्ड, जब तक मुझे कोई गेन नहीं मिलता मैं कोई काम करता ही नहीं हूं। तो ये मेटा प्रोग्राम जब मैंने अपना समझा तब मैं अपने साथ और चलाकी करने लग गया, अपने ही माइंड के साथ। कैसे? कि मैं अपने माइंड को अब कोई भी काम करवाना होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नई बुक परचेज किया, परचेज करने के बाद उस समय तो माइंड बोल रहा था कि पढ़ेंगे, लेकिन घर आने के बाद उसका मन बदल गया, अब उसके कोई गेन नहीं दिख रहा है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है, मैं उसे बोलता हूं इस बुक को एक हफ्ते में फिनिश कर और फिर देख जो तेरा फेवरेट फूड है वो तुझे मिलेगा, तेरे लिए एक नई टी शर्ट, तेरे लिए एक नया मोबाइल फोन, जो भी उसको कन्विंस करने के लिए तैयार हो जाए और जिसमें वो कन्विंस हो जाए। जैसे वो कन्विंस हो जाता है तो इमीडिएट वो काम करना शुरू कर देता है। मैं पेरेंट्स को भी बताता हूं, अगर बच्चा पेन ओरिएंटेड है तो उसे हल्के फुल्के पेन देने जरूरी हैं, लेकिन अगर बच्चा पेन ओरिएंटेड नहीं है, गेन वाला बच्चा है, उसे पेन बिल्कुल ना दें, कहीं ऐसा ना हो कि उसे आप पेन दिखा दिखा कर उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं। जो बच्चे गेन ओरिएंटेड होते हैं उन्हें बहुत हर्ट कर जाता है जब उनके मम्मी पापा बोलते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, गधा है तू, लाइफ लॉन्ग तू ऐसे ही रहेगा, और अगर तूने नहीं पढ़ाई लिखाई की ये ठेला लगाना पड़ेगा। इस प्रकार की बातें पेन वालों को मोटिवेट करती हैं, गेन वालों को नहीं। तो देखिए, कहीं जाने अनजाने में आप अपने बच्चों की गलत पेरेंटिंग तो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अपने बच्चों का पेन गेन मॉडल निकालें, अपना पेन गेन निकालें, अपने स्पाउस का पेन गेन निकालें। आपका स्पाउस किस प्रकार का है? जब आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मैं मूविंग फॉरवर्ड यानी कि गेन ओरिएंटेड पर्सन हूँ, मेरी बिटिया वो भी गेन ओरिएंटेड है, बट मेरी वाइफ वो पेन ओरिएंटेड है। लेकिन अब हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत सहज हो चुके हैं और एक दूसरे के इमोशनल स्विचेस को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। जब मुझे मेरी वाइफ से कुछ काम करवाना होता है तब मैं उसे कुछ इस तरीके से अपने लैंग्वेज को, कम्युनिकेशन को इस तरीके से डिजाइन करता हूं कि उसे कुछ पेन दिखाता हूं ताकि वो इमिडिएटली पेन से बचने के लिए वो काम करे। लेकिन जब मेरी बिटिया को मुझसे कुछ काम करवाना होता है तब वो मुझे कुछ इस तरीके से प्रोग्राम करती है, कुछ इस तरीके से कन्विंस कराती है कि कुछ ना कुछ गेन दिखाएगी, पापा चलो गार्डन में चलेंगे या मॉर्निंग वॉक में चलेंगे, उसके बाद मैं आपको ये वाला बना के खिलाऊंगी। वो इमीडिएट जो सेकंड सेंटेंस होता है वो मेरे को प्रोग्राम के साथ अटैच कर देता है, वो जानती है कि पापा गेन वाले हैं। इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ छोटी छोटी गेम्स खेलते रहते हैं एक दूसरे के प्रोग्राम्स के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे से इरिटेट नहीं होते क्योंकि हम एक दूसरे की प्रोग्रामिंग जान चुके हैं, बल्कि अब ऐसी अंडरस्टैंडिंग के साथ इस रिलेशनशिप में और मजा आता है, एक दूसरे को समझकर एक दूसरे को हल्का फुल्का गेम में पार्टिसिपेंट बनाने में। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मेटा प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम्स हमारे माइंड में एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं और हमें पता भी नहीं होता, ये बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग होती है। ये इमोशनल स्विचेस हैं जिन्हें जब दबाया जाए तो इमीडिएट रिजल्ट्स मिलता है। जानिए अपने मेटा प्रोग्राम्स। बढ़ते हैं अगले मेटा प्रोग्राम्स की तरफ। ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको मान के चलते हैं, खुद को या दूसरों को? यानी आप कोई भी काम खुद को दिखाने के लिए करते हैं, खुद को समझाने के लिए करते हैं, खुद को खुश करने के लिए करते हैं या खुद के लिए करते हैं, या फिर दूसरों को कन्विंस करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं? सोच के देखिएगा कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी भी काम को करने से पहले क्या रहता है, खुद का या दूसरों का। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार जब भी शादियों में जाता हूं, शादियों का सीजन होता है तो बहुत सारे इनविटेशन कार्ड आते हैं तो जाना भी पड़ता है, कई बार ना चाहते हुए भी। जब जाता हूं तो मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूं, जो भी होस्ट होते हैं उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूं किसी बड़ी शादी में जाने के बाद, सर आपने शादी तो बहुत धूमधाम से की है, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? तो कुछ लोगों का आंसर होता है, एक ही तो बिटिया है मेरी, एक ही तो बिटिया है, अगर इसमें भी खर्चा नहीं करूंगा तो मेरा दिल गवाही नहीं देगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लाइफ लॉन्ग अच्छा नहीं लगेगा। ये किस प्रकार का इंसान है? ये इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला इंसान है। क्यों? क्योंकि ये खर्चा कर रहा है अपने दिल की खुशी के लिए। इसको लगता है कि यस मेरी एक ही बिटिया है और मुझे खूब खर्चा करना चाहिए ताकि मुझे खुशी महसूस हो। और कई बार दूसरे प्रकार का आंसर सुनने को मिलता है, वो इस प्रकार से बोलते हैं, मेरी एक ही तो बेटी है तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं खर्चा नहीं करूंगा तो बोलेंगे यार एक ही तो बेटी थी और उन्होंने एक बेटी के लिए भी खर्चा नहीं किया, शादी में धूमधाम नहीं की, कंजूसियत दिखा दी। ये है एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले व्यक्ति। कौन सही है कौन गलत ये नहीं बात कर रहा हूं, बात सही और गलत की है ही नहीं, नथिंग इज राइट और रॉन्ग, डोंट बी जजमेंटल, जस्ट हमें ये प्रोग्राम समझना है। यानी कि जो इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला व्यक्ति है वो कोई भी काम करने से पहले अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखता है, वो अपनी खुशी देखता है, अपने लिए करता है। और जो एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला व्यक्ति है वो बार बार बाहरी दुनिया को देखता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसके दिमाग में पहले लोग होते हैं। ज्यादातर आपने देखा भी होगा हम बहुत सारे काम लाइफ में इसलिए नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये लोग कहीं होते ही नहीं है। प्रॉब्लम लोग नहीं होते, इनका रेफरेंस फ्रेम होता है। जो लोग एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले हैं उन्हें ये चार लोग हमेशा हर जगह दिखाई दे जाएंगे कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे। कौन होते हैं ये चार लोग? कहीं नहीं, हमारे माइंड में ही बसे होते हैं। लेकिन इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ये चार लोग दिखाई नहीं देते, उसे एक ही व्यक्ति दिखाई देता है, वो है खुद। वो सब काम अपने लिए करता है। कहां पर और कहां पर यूज होता है देखिएगा, दिख जाएंगे आपको ऐसे लोग काम करते हुए, आपकी टीम में भी होंगे, आपके आसपास होंगे जो अपनी खुशी के लिए काम करते हैं, उन्हें तसल्ली भी तब मिलती है जब वो खुद से खुश होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें तसल्ली तब मिलती है जब बाकी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। जब तक दूसरे लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा लाइफ में, उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल स्पाउस की बात करें, पहले अपने स्पाउस का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूर देख लें। अगर आपका स्पाउस एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है तो उसे बार बार अप्रिशिएट करना जरूरी है, क्योंकि अगर उसे अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो आपके लिए अच्छा काम नहीं करेगा। खाना बना के खिला रहे हैं या आपको कहीं घूमने लेके जा रहे हैं, मेल और फीमेल डजंट मैटर, तो छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स उसे देते रहें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझकर। लेकिन अगर इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला व्यक्ति है तो उसे आप कॉम्प्लीमेंट नहीं भी देंगे तो भी वो खुश रहेगा, वो अपनी खुशी के लिए करेगा। जानिए अपने स्पाउस का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अपने बच्चों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कई बार मैंने पेरेंट्स को देखा कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए दूसरों के रेफरेंसेस देते हैं कि देख बेटा वो तेरा फ्रेंड 99.9 लेकर आया है, तो एक है जो 60 पे अटका हुआ है। अगर ये इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला है तो इसे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला तो ये बातें से चुप जाएंगी, समझने की जरूरत है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें डे टू डे लाइफ में होती रहती हैं, आपको समझने की जरूरत है ये मेटा प्रोग्राम्स क्या है। एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद अगला मेटा प्रोग्राम है अटेंशन डायरेक्शन। अटेंशन डायरेक्शन यानी कि किसी भी काम को करते समय अटेंशन कहां पर फोकस्ड होती है, सेल्फ और अदर्स। यानी आप कोई काम करते समय किसको अटेंशन देते हैं, सेल्फ को या अदर्स को। फॉर एग्जाम्पल आप एक पार्टी में गए हुए हैं और खाने का समय हो गया है, खाने के जो स्टॉल्स लगे हुए हैं वहां पर भीड़ लगी हुई है, लाइन में आप खड़े हुए हैं। ये घटना सबके साथ कहीं ना कहीं घटी ही होती है। और लाइन में जब आप खड़े हुए हैं तो एक व्यक्ति पीछे जो आपके खड़ा हुआ है वो बार बार आगे आने की कोशिश कर रहा है, आपसे आगे आपसे पहले लेने की कोशिश कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, ये कौन है? ये अटेंशन डायरेक्शन में सेल्फ वाला इंसान है, इसका डायरेक्शन हमेशा अपने लिए रहेगा, ये बोलेगा पहले मैं। जब आप ट्रेन की लाइन में खड़े हैं, टिकट्स की लाइन में खड़े हैं, ट्रेन में चढ़ने के लिए जा रहे हैं धक्का मुक्की, तो वो धक्का मुक्की करके पहले चढ़ने की कोशिश करेगा क्योंकि उसका अटेंशन डायरेक्शन सेल्फ के लिए है। और कुछ बार कई बार आपको ऐसे इंसान मिलेंगे जब आप क्यू में खड़े हुए हैं खाने की क्यू में, तो वो आपको पहले से प्लेट उठा कर देगा, सर आप पहले आप। कहीं चढ़ रहे हैं ट्रेन में तो वो आपको पहले से बोलेंगे, सर आप चढ़ जाइए पहले मैं, पहले आप, ये इनके वर्ड्स होते हैं, सर पहले आप ले लीजिए, सर पहले आप चढ़ जाइए। ये अदर्स के वाले होते हैं, अटेंशन डायरेक्शन अदर्स। दोनों ही सही और गलत कुछ नहीं होता, मैंने पहले भी कहा, बस प्रोग्राम समझना है। तो जो अदर्स के प्रोग्राम वाले हैं उनके प्रोग्राम को भी समझिए और सेल्फ वाले को भी समझिए। अगर आप सेल्फ प्रोग्राम्ड पर्सन हैं, यानी थोड़ा सा स्वार्थी हो सकते हैं, इसको ऐसा बोल सकते हैं सेल्फिशनेस, थोड़ा सा अपने लिए सोचने वाला इंसान, अदर्स जो थोड़ा दूसरों के लिए भी सोचता है, तो इस प्रकार के जो मेटा प्रोग्राम को आप समझेंगे तब आपको पहले तो अपना समझना है, फिर अपने फैमिली मेंबर्स का, फिर अपने कलीग्स का, फिर अपने टीम मेंबर्स का, फिर आपके जो भी जान पहचान वाले हैं। और अगर आप किसी बिजनेस में हैं, क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, तो क्लाइंट्स के भी मेटा प्रोग्राम समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपकी सेल्स, मार्केटिंग, कन्वर्जन में काफी हेल्प मिलेगी। अगला मेटा प्रोग्राम समझते हैं, यह है मैचर और मिसमैचर। मैचर और मिसमैचर का मतलब होता है जो मैचर होते हैं वो ज्यादातर एग्री करते हैं मेजोरिटी के साथ, और मिसमैचर जो होते हैं वो डिसएग्री करते हैं मेजोरिटी के साथ। समझिएगा बात को, यानी कि मान लीजिए एक मीटिंग चल रही है, 10 लोग बैठे हुए हैं, किसी विषय पर चर्चा चल रही है और 9 लोगों ने एक सहमति बना ली, हां सर बॉस ने कुछ कहा, 9 लोगों ने हां में हां मिलाई, और एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो शांत से बैठा हुआ, उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो बार बार बोल रहा नो सर, नो आई एम नॉट कन्विंस्ड, सर मैं एग्री नहीं कर रहा हूं, यह है मिसमैचर। और कई बार क्या होता है कि मिसमैचर को हम इग्नोर कर देते हैं या उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, नो माय डियर फ्रेंड, ये जो मिसमैचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, क्योंकि जो मिसमैचर टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं ये किसी भी घटना को एक अलग एंगल से देख रहे होते हैं, इनका देखने का एक नजरिया अलग होता है, इनकी प्रोग्रामिंग अलग होती है, ये उसमें से नुक्स निकालेंगे, गलती निकालेंगे या उसको नहीं समझेंगे कि आपके साथ एग्री नहीं करेंगे। इसको कैसे यूज करना है, इसका फायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। आप अपनी टीम में एक मिसमैचर जरूर रखें। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे जा कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में 10 लोगों की टीम है, तो एक मिसमैचर को जरूर ऐड करें, क्योंकि वो जो 9 लोग हैं वो एग्री तो करेंगे, वो आपके साथ काम भी करेंगे, लेकिन एक मिसमैचर आपको वो एंगल पहले से ही दिखा देगा जिसकी संभावना 5% 10% आपके लिए हो सकती थी, वो पहले से ही देख ले रहा है उस चीज का। मैचर और मिसमैचर को और तरीके से पहचान सकते हैं कि मिसमैचर जो होते हैं, जैसे आप कुछ लेकर लिखकर लेकर गए, कोई आपने राइटअप लिखा और उसको दिखाने के लिए गए, अगर वो मैचर है तो वो फटाफट देखेगा और तारीफ भी करेगा, बहुत अच्छा। मिसमैचर है ना, उसमें से 50 अच्छी चीजें नहीं देखेगा, वो एक या दो जो गलतियां होंगी ना वो एकदम पिन पॉइंट कर देगा कि ये वाली लाइन देखो, इसमें तुमने कॉमा नहीं लगाया, ये देखो तुमने यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। तो यानी कि ये उसमें से गलतियां पकड़ने में माहिर होते हैं, एक बड़े व्यू में से जो अच्छा अच्छा दिख रहा है उसमें से गलती निकाल लेंगे। तो अच्छा तो हुआ, उसके लिए आपको 4 बार एडिटिंग करवानी पड़ती, 4 बार 4 लोगों के पास भेजना पड़ता, उस मिसमैचर ने एक ही बार में निकाल दिया। इस तरीके से मिसमैचर आपकी मदद करता है एक अलग डिफरेंट एंगल से देखने में। मुझे घटना याद आ रही है, मैं अपने एक फ्रेंड के यहां गया था जिसके घर की ओपनिंग थी, हाउस ओपनिंग सेरेमनी उन्होंने रखा था, बहुत शानदार घर बनाया था उसने, और हम 8-10 लोग एक साथ गए थे उसको बधाई देने के लिए। वो बेचारा बहुत खुश होकर पूरे घर को हमें दिखा रहा था, और मेरे साथ एक मिसमैचर भी था, उस हमारे 10 लोगों की टीम में एक मिसमैचर था। हम सब लोग उसके घर की तारीफ कर रहे थे कि वाह इंटीरियर बहुत जबरदस्त है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, और वो जो मिसमैचर था वो बार बार मेरे कान में बोल रहा था कि देख आर्किटेक्ट ने ना वहां इंटीरियर ने ये वाली कमी छोड़ दी है, वो चीज थोड़ी टेढ़ी लगी हुई है, ये वाली पिक्चर यहां नहीं थोड़ी सी यहां होनी चाहिए थी। तो मुझे इमीडिएट उसकी बातें सुनकर ये मैचर और मिसमैचर प्रोग्रामिंग मेटा प्रोग्राम याद आ रहा था। लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर ये मिसमैचर उस आर्किटेक्ट की टीम में होता और घर की ओपनिंग से पहले ये मिसमैचर सारी गलतियां निकाल देता तो ये घर और अच्छा हो जाता। तो यस, ऐसे ही एक मिसमैचर अपनी टीम में रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप डेवलप करना चाहते हैं अपने आप को तो एक मिसमैचर अपने आसपास जरूर रखें जो आपकी कमियां निकालता रहे, जो आपको उड़ने ना दे। कबीर जी ने भी कहा है, निंदक नेड़े राखिए अंगिन कुटीर बंधाए, बिन साबुन पानी के निर्मल करे सुहाए। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कमियां निकालता हो उसके अपने आसपास रखें, उसको अपने घर में ही जगह दे देनी चाहिए, क्योंकि बिना साबुन और पानी के आपके मन को साफ करता रहेगा, वो आपकी कमियां निकाल निकाल के आपके अंदर बस केवल खूबियां ही रहने देगा। किसी भी तरीके से समझें, मिसमैचर अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस तरीके से जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर आप इस तरीके से लेंगे तो मिसमैचर को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। अगला पार्ट है ये मेटा प्रोग्राम का कन्विंसिंग पैटर्न, यानी कि कन्विंस होने का एक पैटर्न, किस बात से किस तरह से वो कन्विंस होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखकर कन्विंस होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनकर कन्विंस होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद फील करके कन्विंस होते हैं, यानी कि विजुअल ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। जो आपने VA के मॉडल में पढ़ा जो 3 टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं, तो विजुअल लोग विजुअल के द्वारा ही कन्विंस होंगे, उन्हें कन्विंस करने के लिए कुछ दिखाना होगा। ऑडिटरी लोग ऑडिटरी पैटर्न से कन्विंस होते हैं, ऑडिटरी लोगों को कन्विंस करने के लिए कुछ सुनाना होगा, सुनकर ही कन्विंस होंगे। और काइनेस्थेटिक जो हैं वो जब तक खुद से फील नहीं करेंगे तब तक वो कन्विंस नहीं होंगे। ये कन्विंसिंग पैटर्न आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप बिजनेस में हैं, मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, तो क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए आपको उसकी पर्सनैलिटी का एक एनालिसिस पता होना चाहिए। अगर विजुअल पर्सनैलिटी आपके सामने में है क्लाइंट में, तो आप उसे विजुअल्स दिखाएं अपने प्रोडक्ट्स के, ताकि वो कन्विंस हो सके। और विजुअल उसके लिए अच्छे होने चाहिए, शानदार होने चाहिए, क्योंकि उसके लिए विजुअल ही कन्विंसिंग पैटर्न है। ऑडिटरी के लिए उस प्रोडक्ट की खूबियां आपको सुनानी होंगी, सुना सुना कर ही आप, शब्दों के फॉर्म में, उसे कन्विंस कर सकते हैं। काइनेस्थेटिक, जब तक उस प्रोडक्ट को लेकर देखकर यूज करके फील नहीं करेंगे तब तक वो कन्विंस नहीं होंगे। अच्छा, कन्विंसिंग पैटर्न में एक और चीज होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार में कन्विंस होते हैं, एक ही बार। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें दो तीन बार, तीन चार बार रिपीटेडली सेम एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हर बार, एवरी टाइम। जब तक वो हर बार नहीं महसूस करेंगे तब तक कन्विंस नहीं होंगे। मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ उठते बैठते रहता हूं, एक फ्रेंड है मेरे, एक बार एंटरप्रेन्योर्स की मीटिंग चल रही थी तो मैंने ये कन्विंसिंग पैटर्न वहां पे बैठे हुए एंटरप्रेन्योर से पूछा, एक क्वेश्चन पूछा कि आप कब कन्विंस होते हैं कि आपका स्टाफ, आपकी टीम का जो स्टाफ है, टीम मेंबर है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैंने कहा कि आप शब्दों में से बताएं, बयां करें लैंग्वेज में। तो किसी ने कहा कि जब मैं देखता हूं कि मेरा टीम मेंबर अच्छे से काम कर रहा है। Yes. जब मैं देखता हूं, ये ऐसा इंसान था जो विजुअल था और जो एक ही बार देख के कन्विंस होने वाला इंसान था। दूसरे ने कहा कि जब मुझे कुछ लोग बताते हैं मेरे इंप्लॉई के बारे में, जब मैं मेरे दूसरे इंप्लॉई उस इंप्लॉई के बारे में बार बार बताते हैं, सर ये बहुत अच्छा काम करता है, बताते हैं कई बार, ये रिपीटेडली कन्विंसिंग पैटर्न वाला ऑडिटरी इंसान था। जब ये सुनता है अपने एम्प्लॉय के बारे में दूसरे एम्प्लॉय से और वो उसकी तारीफ कर रहे होते हैं तब ये कन्विंस होता है, और कई बार कई लोगों से। थर्ड, काइनेस्थेटिक। वो बोला, एक पर्सन ने कहा कि जब तक मैं उसको अपने साथ काम करा के नहीं देखता हूं और अपने सामने जब मैं उसके साथ काम करता हूं और मुझे लगता है कि यस ये एफिशिएंट है, ये जबरदस्त है, तब। यानी कि काइनेस्थेटिक सिंगल कन्विंसर था, सिंगल टाइम कन्विंस में। और एक ऐसा बोला कि मैं तो यार अपने स्टाफ को तब तक परफॉर्मेंस का अवार्ड नहीं देता हूं जब तक मैं उन्हें लंबे समय तक देख नहीं लेता हूं कि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं, एक महीना तो अच्छा पीक परफॉर्मेंस दिखाते हैं, फिर डाएं टाइम फिस, तीन महीने तक, चार महीने तक। तो मैंने उनसे पूछा कितना, उसका बोलना था कि शायद एक साल तक जो कंसिस्टेंट रिजल्ट दिखाएगा उसी को मैं अवार्ड देता हूं। यानी देखा, अपने कन्विंसिंग पैटर्न उनके प्रोग्राम का हिस्सा होता है। सेम टू सेम अगर आप किसी कंपनी के टीम मेंबर हैं, एम्प्लॉई हैं, अपने बॉस का कन्विंसिंग पैटर्न देखें। अगर आप मैनेजर हैं, लीडर हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स का कन्विंसिंग पैटर्न देखें, अपना खुद का कन्विंसिंग पैटर्न, आप किस प्रकार से प्रोग्राम्ड हैं। जब आप इस तरीके से समझेंगे इसको बहुत काफी जगह पर यूज कर पाएंगे। ओके, अगला मेटा प्रोग्राम, एक होता है पॉसिबिलिटी और एक होता है नेसेसिटी। पॉसिबिलिटी वर्सेस नेसेसिटी। कुछ लोग इस तरीके से प्रोग्राम होते हैं कि वो अपनी नेसेसिटी के लिए काम करते हैं, यानी अपनी जरूरतों के लिए। जो उनकी मिनिमम जरूरतें होती हैं, जब तक वो पूरी होती रहेंगी तब तक वो वहां पर काम करते रहेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहेंगे। और कुछ लोग इस प्रकार से प्रोग्राम होते हैं कि वो नेसेसिटी के लिए नहीं काम करते, वो पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं। यानी कि अगर किसी वर्क प्लेस में, किसी कंपनी में उसे नई नई पॉसिबिलिटी मिलेंगी तभी वो काम करेगा। लेकिन अगर उसे अपना फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा है, उसको लग रहा है कि जितनी मेरी सैलरी है, जो मेरा पोस्ट है वही रहेगा, तो वो धीरे से नई पॉसिबिलिटीज तलाश करने के लिए दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देना शुरू करेगा, स्विच ओवर करने का सोचना शुरू करेगा। लेकिन जो नेसेसिटी वाले इंसान होते हैं, जब तक उनकी नेसेसिटी पूरी होती रहेंगी वो चुपचाप वहां काम करते रहेंगे बिना किसी इधर उधर के इंटरव्यूज के। दोनों ही लोग अच्छे होते हैं। कैसे? अगर आप किसी कंपनी के एंटरप्रेन्योर हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हेड हैं, तो दोनों प्रकार के लोगों को आपको अपनी टीम में शामिल करके रखना चाहिए। जो लोअर वर्किंग स्टाफ होता है, असिस्टेंट और डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए जो स्टाफ होते हैं, वो नेसेसिटी वाले होने चाहिए, उनकी जरूरतें पूरी होते जानी चाहिए। अगर उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं और नेसेसिटी वाले स्टाफ हैं तो वो आपके साथ हमेशा काम करते रहेंगे। और आपको ध्यान देना है कि उनकी जरूरतें पूरी होती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो फिर वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जो हायर स्टाफ होते हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो आपकी कंपनी के मार्केटिंग स्टाफ हैं, सेल्स वाले हैं, वो पॉसिबिलिटीज वाले होने चाहिए। क्योंकि वो नई नई पॉसिबिलिटीज सोचें, वही तो आपकी कंपनी को आगे लेकर जाएंगे, नए नए बिजनेस एक्सपांशन के बारे में सोचेंगे। अगर आपकी कंपनी के जो टॉप मोस्ट स्टाफ हैं, लीडर्स हैं, सीईओ हैं, मार्केटिंग स्टाफ हैं, अगर वो पॉसिबिलिटीज वाले नहीं हैं, नेसेसिटी वाले हैं, तो वो शांति से बैठे रहेंगे, जितना उनकी सैलरी है उतने पे काम चलाते रहेंगे। और इसका उल्टा, अगर आपकी कंपनी के जो लोअर स्टाफ हैं वो अगर पॉसिबिलिटीज वाले हुए तो डेली आप नए स्टाफ को आपको रिक्रूट करने पड़ेंगे। आपने 10 दिन तक ट्रेनिंग देकर एक स्टाफ को ट्रेन किया है कि एक मशीन को रन करने के लिए, अगर वो पॉसिबिलिटी वाला था अगले महीने छोड़ के चला जाएगा, फिर आपको उस मशीन को रन करने के लिए नई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है, दोनों प्रकार के स्टाफ, दोनों प्रकार के टीम मेंबर आपके पास होने चाहिए और दोनों को आप जरूरतों के हिसाब से पूरा करें। जिनकी नेसेसिटीज़ हैं उनकी नेसेसिटीज़ पूरी करते रहें, जो पॉसिबिलिटीज़ वाले हैं उनके लिए नई नई पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करते रहें। खुद के लिए देखें, आप कोई भी काम क्यों करते हैं, नेसेसिटी के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए? जब आप अपने आप को ढूंढेंगे, अपने आप को पाएंगे, बहुत सारे प्लस चेंजेस आपको अपने अंदर मिलेंगे और आप अपने साथ और ज़्यादा कूल हो पाएंगे। अभी तक आपने बहुत सारे मेटा प्रोग्राम को समझा, कुछ और मेटा प्रोग्राम। एक मेटा प्रोग्राम होता है इंफॉर्मेशन चंक डाउन और ग्लोबल, डिटेल ग्लोबल, डिटेल वर्सेस ग्लोबल। यानी कि कुछ लोग पूरी इंफॉर्मेशन को एक बड़े व्यू में देखते हैं, उनका देखने का नजरिया थोड़ा बड़ा होता है, किसी भी चीज को वो एक बड़े व्यू में देखने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो उस बड़ी चीज में से छोटी सी चीज को देख लेंगे। उनका देखने का नजरिया कुछ इस प्रकार का होता है कि वो छोटी सी चंक डाउन इंफॉर्मेशन को पकड़ लेंगे। आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे। जैसे आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी पर्सन को किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बोलने को बोलें। जैसे मान लीजिए आप पूछें अपने घर के बारे में, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को कुछ पूछेंगे, तो देखिए किसी पर्टिकुलर चीज को बताते हैं अपने घर में से या पूरे घर के किसी बड़े व्यू को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बार अपनी टीम के साथ ऐसे ही पूछा, तो टीम के दो मेंबर्स मेरे सामने बैठे हुए थे। मैंने पूछा कि जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं इसमें से तुम्हें एक लाइन के बारे में इसे बताओ। तो एक स्टाफ ने कहा, सर इस कमरे की छोटी सी जो लाइट है, वो जो कंप्यूटर के पीछे की जो लाइट है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरे स्टाफ का कहना था, इस पूरे कमरे में सर अगर लाइट ऑफ कर दिया जाए और जो छोटी लाइटें हैं वो सारी ऑन कर दी जाएं, तो यहां का जो माहौल रहेगा वो शानदार है। यानी कि जो पहला स्टाफ था उसका था चंक डाउन, छोटी डिटेल देखता है वो, और जो दूसरी स्टाफ थे उनका था एक ग्लोबल व्यू, बड़ा व्यू। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, एक ऐसा इंसान जो चंक डाउन करके डिटेल्ड व्यू देखता है, वो एक छोटा टॉर्च लाइट लेके चलता है, उसके हाथ में टॉर्च लाइट है, वो छोटी छोटी चीजों को देखेगा। और ये जो दूसरा पर्सन है ग्लोबल, बड़ा व्यू, ये एक सर्च लाइट लेके चलता है अपने पास, ये बड़ा हेलीकॉप्टरिक व्यू देखता है चीजों का, ऊपर से देखता है। तो जब जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी तो ये जो ग्लोबल वर्क व्यक्ति होते हैं ये एक बड़ा व्यू देखते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और जो ये छोटे होते हैं डिटेल, वो उसका एक माइनर डिटेल एनालिसिस करके निकाल देते हैं। दोनों ही लोग अच्छे होते हैं। अगर किसी चीज का पोस्टमार्टम करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स निकलवाने हैं, तो ये आप दूसरे प्रकार के एम्प्लॉयज जो डिटेल निकाल सके उनको यूज करें। जब किसी प्रॉब्लम का ओवरऑल सॉल्यूशन निकलवाना है, पोस्टमार्टम नहीं करना है, ओवरऑल चंक डाउन ऊपर से दिखवाना है, हेलीकॉप्टर में निकलवाना है, तो दूसरे प्रकार के टीम मेंबर्स को यूज करें। प्रॉब्लम का रूट कॉज जानना है तो चंक डाउन वाले को यूज करें, डिटेल्ड वाले को, क्योंकि वो पोस्टमार्टम करके निकाल डालेगा। और सॉल्यूशन निकलवाना है तो ग्लोबल वाले को, क्योंकि वो प्रॉब्लम का ऊपर से हेलीकॉप्टर व्यू लेके देखेगा, बड़ा व्यू। सोचिए आप किस प्रकार से हैं। अगला प्रकार का ये होता है प्राइमरी इंटरेस्ट, यानी कि आपका प्राइमरी इंटरेस्ट किन चीजों में रहता है, जैसे थिंग्स, पीपल, प्लेस, टाइम, एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन। यानी कि प्राइमरी इंटरेस्ट किन चीजों में होता है ये आप पता कर सकते हैं लोगों का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बार अपनी टीम मेंबर से जानने के लिए कि ये किस प्रकार के प्रोग्राम हैं, एक क्वेश्चन पूछा, थिंक ऑफ बेस्ट मील यू एवर हैड। आपने अभी तक जो अभी तक का बेस्ट खाना अभी तक खाया है उसके बारे में सोचें। तो एक स्टाफ ने कहा कि सर पुलाव, ओके, और दूसरे ने कहा सर क्वींस क्लब, सर सेलिब्रेशन। यानी कि जो पहला स्टाफ था पुलाव जिसने कहा, उसका प्राइमरी इंटरेस्ट चीजों में है, थिंग। खाने की बात हुई तो खाना ही तो बताना, पुलाव। दूसरे ने कहा क्वींस क्लब, फिर मैंने फिर दोबारा क्वेश्चन दोहराया तो उसे दूसरा एक्सपीरियंस याद आया जिसमें था सेलिब्रेशन, यानी कि होटल और एक क्लब का नाम उसने लिया। उसे फूड में इंटरेस्ट नहीं है, प्लेस में इंटरेस्ट है, उसका प्राइमरी इंटरेस्ट प्लेस में रहता है। तो जब भी ये व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट प्लेस में है, अगर उसे खाना खाना है, तो वो खाना क्या खाना है वो डिसाइड नहीं करेगा, वो ये देखेगा कि प्लेस कहां का अच्छा है, प्लेस। और जो पहला व्यक्ति था जिसने बताया पुलाव, वो ये देखेगा कि मुझे खाना क्या है, वो खाना उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा। कुछ लोग होते हैं थिंग्स में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ प्लेसेस में, कुछ टाइम में, कुछ एक्टिविटी में। कुछ लोगों को खाने से मतलब नहीं है, प्लेस से भी मतलब नहीं है, किसके साथ खाना है ये डिपेंड करता है। वो ये देखेंगे कंपनी, कि मैं किन लोगों के साथ जा रहा हूं। तीसरे स्टाफ को पूछा थिंक ऑफ बेस्ट मील यू एवर हैड, उसने कहा सर जब मैं पिकनिक पे अपने दोस्तों के साथ गया था, खुद से पकाकर हमने खाया था। क्या खाया था वो नहीं, उसने बताया कि मैं पिकनिक में अपने दोस्तों के साथ गया था, ये था उसका बेस्ट मील। इस प्रकार से आप अपने आसपास के लोगों का इंटरेस्ट जानिए और आप अपना देखिए आपका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या रहता है, पर्सन में, पीपल में, प्लेस में, थिंग्स में, एक्टिविटी में या टाइम में। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है प्राइमरी इंटरेस्ट जानना। ये हमारे प्रोग्राम्स हैं जो बचपन से हमने डेवलप कर लिए हैं। एक प्रोग्राम और बात करते हैं, वर्किंग स्टाइल। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक लीडर हैं, मैनेजर हैं, अपनी टीम का वर्किंग स्टाइल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले काम करना पसंद होता है, इंडिपेंडेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें टीम में ही काम करना पसंद होता है, अकेले काम नहीं कर सकते। आप इन्हें कोई काम दोगे, ये लीजिए ये प्रोजेक्ट पूरा करके कल तक सबमिट करें, तो इसी इनका अगला क्वेश्चन होगा सर मेरे साथ और कौन, क्यों? क्योंकि इन्हें हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है, टीम में काम करने की आदत होती है। और जो इंडिपेंडेंट हैं, अगर आप उन्हें कहेंगे कि ये लीजिए काम और आपको मैं ये चार लोग भी दे रहा हूं उनके साथ काम करेंगे, वो बोलेंगे तो सर मैं अकेला कर लूंगा, डोंट वरी। अगर आप इंडिपेंडेंट पर्सन को टीम के साथ डाल देंगे वो काम नहीं कर पाएगा, या कर भी देगा तो अपना 100% नहीं दे पाएगा। और अगर आप ऐसे पर्सन जो कोऑपरेटिव हैं, यानी कि जो टीम, जिन्हें टीम में काम करना पसंद है, अगर आप उनको अकेले काम देंगे तो वो असहज हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें सहारा चाहिए किसी का। और एक थर्ड प्रकार की कैटेगरी होती है जो अकेले भी काम कर लेते हैं और टीम में भी काम कर लेते हैं, दे आर द बेस्ट एम्प्लॉय। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इंडिपेंडेंट पर्सन आपके पास में है तो आप उन्हें बेस्ट ना समझ रहे हैं और उन्हें काम ना दें, उनसे उनके स्टाइल में काम लीजिए। कुछ ऐसे काम दीजिए जहां पर वो इंडिपेंडेंट काम करके दिखाएं। जो टीम वाले काम हैं उन्हें ऐसे प्लेसेस पे डालें, ऐसे प्रोजेक्ट में यूज करें जहां पर टीम वर्क की जरूरत है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। और ऐसे लोग जो दोनों जगह काम कर सकते हैं, आप उन्हें लीडर बनाएं, क्योंकि वो एज ए लीडरशिप भी काम कर सकते हैं और एज ए मैनेजर जब वो टीम का हिस्सा बन के काम करेंगे वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो इस प्रकार से ये मेटा प्रोग्राम जब आप जानोगे अपने और दूसरों के, तो बहुत सारे डे टू डे एक्टिविटी में, अपनी लाइफ में, बहुत जगह पर इन्हें यूज कर सकते हैं। मूविंग अवे मूविंग फॉरवर्ड, पेन गेन मॉडल, पॉसिबिलिटीज वर्सेस नेसेसिटी, इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिव, प्राइमरी इंटरेस्ट, इंफॉर्मेशन चंक डाउन और ग्लोबल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये छोटे छोटे प्रोग्राम जब आप समझते जाएंगे तब आपको पॉसिबिलिटी नेसेसिटी, कन्विंसिंग पैटर्न, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंटरनल एक्सटर्नल, अटेंशन, सेल्फ और अदर्स, जब आप इन सारों को एक साथ मिला के देखेंगे तो सबसे पहले देखिए अपने प्रोग्राम्स। अब आप लिस्ट बनाइए, देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक जितने मैंने बताया, इन सब के अंदर आपके कौन से प्रोग्राम हैं। जो नोटशीट मैंने दी है, जो नोट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, उनमें से आप ये क्वेश्चंस पढ़ें, क्वेश्चंस अपने आप से पूछें और अपना प्रोग्राम निकालें, और फिर एक ओवरऑल सारे प्रोग्राम निकालने के बाद देखें कि आप किस प्रकार के प्रोग्रामर हैं। ओवरऑल जब आप ओवरऑल अपने आप को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा ओके, आपके बहुत सारे बिहेवियर, आपके बहुत सारे वांटेड और अनवांटेड बिहेवियर इन प्रोग्राम की वजह से हैं। अब आप अपनी वाइफ का, अपने स्पाउस का, अपने बच्चों का, अपने टीम मेंबर्स का, सबका निकालिए प्रोग्राम, और प्रोग्राम निकालने के बाद फिर आप देखिए उनके बिहेवियर्स को उनके साथ मैच करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा बहुत सारे बिहेवियर जिनसे आप इरिटेट होते थे वो तो उनके प्रोग्राम हैं। और ये प्रोग्राम में खूबसूरती ये है कि अब आप अवेयर हो गए हैं कि ये आपके प्रोग्राम है, ये बिहेवियर नहीं है, ये तो आपकी प्रोग्रामिंग है। अब आप इस प्रोग्रामिंग को बदल भी सकते हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। पहले अपने खुद के प्रोग्राम जानने हैं, फिर जानने के बाद ये समझना है कि कौन सा प्रोग्राम कहां पर ठीक होता है। एक ही प्रकार के प्रोग्राम कर करके अपनी लाइफ को एक ही मोड में चला रहे हैं, अब आपको क्या करना है, अपने प्रोग्राम बदल कर देखिए, बीच बीच में दूसरे प्रोग्राम यूज करके देखिए, जो आप ज्यादातर प्रोग्राम्ड हैं उससे दूसरा वाला बिहेवियर। अगर आप प्रोग्राम्ड बाय सेल्फ हैं तो कहीं कहीं पर प्रोग्राम्ड बाय अदर्स करके देखिए। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेल्फ हैं तो अदर्स का रेफरेंस लेकर देखिए बीच बीच में। अगर आप पेन से मोटिवेट होते हैं तो कभी कभी गेन से मोटिवेट होकर देखिए, बदल के देखिए अपनी प्रोग्रामिंग को। नेसेसिटी वाले हैं, पॉसिबिलिटी वाले बनकर देखिए। जब आप इस तरीके से अपने प्रोग्राम को समझकर बार बार बदलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप दोनों प्रोग्राम के बीच में एक बैलेंस बना सकें। जनरली हम दोनों ही प्रोग्राम यूज करते हैं, सारे मेटा प्रोग्राम हम यूज करते हैं, बट प्रेफरेंशियली यानी कि ज्यादातर मैक्सिमम टाइम कौन सा प्रोग्राम यूज होता है वो हमारा प्रोग्राम का पैटर्न बन जाता है। दूसरों के लिए कैसे, जब आप दूसरों के लिए समझ जाएंगे तो ये उनके लिए इमोशनल स्विचेस का काम करेगा। यानी कि आप दूसरों से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो उसके प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली ही बात करें उसे। अगर मान लीजिए आप एक मिसमैचर से बात कर रहे हैं तो आप मिसमैचर को इस तरीके से कहें कि मैं जानता हूं कि आप मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, यानी कि यस, और वो कहेगा हाँ मैं डिसएग्री कर रहा हूं, क्योंकि वो मिसमैचर है, वो एग्री नहीं करेगा। तो आपको पहले से आपका कम्युनिकेशन स्टाइल ऐसा ही रखना है, यस यू मे डिसएग्री विद मी, और वो यस कहेगा इमीडिएट, यानी कि वो डिसएग्री में ही मैच करेगा। इस प्रकार से जो पेन वाला है उसे हल्के से पेन दिखाएं, जो गेन वाला है उसे हल्के से गेन दिखाएं, जो पॉसिबिलिटीज वाला है उसकी पॉसिबिलिटीज देते रहें उसे, जो नेसेसिटी वाला है उसके नेसेसिटी पे काम करें। यानी दूसरों के प्रोग्राम समझने से आप उनके साथ एक बेटर कॉन्ग्रुएंस क्रिएट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन रेपो क्रिएट कर सकते हैं। फिर बड़ी बात आती है कि आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे डिजाइन करें। दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी, कि आप अपने कम्युनिकेशन को इस तरीके से डिजाइन करें कि इसमें सारे मेटा प्रोग्राम्स यूज हो जाएं। क्योंकि जब आप एक पब्लिक से डील करते हैं, जब आप एक टीम से डील करते हैं, आपको नहीं पता होता उनके प्रोग्राम क्या हैं। तो आपको अपने कम्युनिकेशन को इस तरीके से डिजाइन करना है कि उसमें सभी प्रकार के प्रोग्राम्स का समन्वय हो, कॉम्बिनेशन हो, और कोई बात किसी को हिट कर जाए, कोई बात किसी को हिट कर जाए। जैसे मैं वीए के मॉडल में सिखाता हूं कम्युनिकेशन को डिजाइन करना, कि आपका कम्युनिकेशन के अंदर तीनों प्रकार के वर्ड्स होने चाहिए, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपके सामने विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक तीनों प्रकार के लोग बैठे हैं, और तीनों को ही कन्विंस आपको करना है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक के अलावा आपके पास इतने सारे मेटा प्रोग्राम्स वाले व्यक्ति आसपास हैं, तो आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए कि ये सारे प्रोग्राम्स को आपको साथ में लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ट्रेनर हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को सेल करते हैं, तो आपकी सेल्स पिच क्या होनी चाहिए। सेल पिच इस तरीके से होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में मेरा एक नया प्रोग्राम आ रहा है जिसका नाम है एनलाइटन योर इनर लाइट, और ये प्रोग्राम एनलाइटन योर इनर लाइट आपके चक्र विज्ञान पर आधारित है, आपकी ऑरा विज्ञान पर। ये जो सात लाइट होती हैं ये आपके अंदर होती हैं, मेडिटेशन के द्वारा, हीलिंग साइंसेस के द्वारा, साइकोनिरोबिक साइंस के द्वारा आप इन चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आप एक बार इन्हें एक्टिवेट कर लेते हैं तब आपकी लाइफ बहुत ही वाइब्रेंट, एनर्जेटिक और हेल्दियर और हैप्पियर बन जाएगी। यानी ये चक्र आपकी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों के सीक्रेट्स हैं। जब आप अपनी ऑरा को एक्टिवेट करेंगे, वाइब्रेंट बनाएंगे, तो आप एक मैग्नेट बन जाएंगे। फिर आप मैग्नेट बनने के बाद जो चाहें अट्रैक्ट कर सकते हैं। यस, मैं बात कर रहा हूं एनलाइटन योर इनर लाइट अप्लाइड एन पी एन पी प्रोग्राम, अप्लाइड पी एन पी प्रोग्रामिंग की, चक्र प्रोग्रामिंग की। जैसे जिम में जाकर मसल बनाए जाते हैं, ऐसे ही चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं, चक्रों की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और ये चक्र फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये चारों डायमेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो अटेंड करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की वो सारी चीजें जो आपकी नेसेसिटीज हैं, यानी कि हेल्थ और वेल्थ, वो आपको स्पॉन्टेनियसली आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। और नेसेसिटी के साथ साथ जो भी आपके ड्रीम्स हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, जो आपने सोच के रखे हुए हैं, वो ड्रीम्स भी आप अपने पूरे कर पाएंगे। और अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी तो चेंज हो ही रही है, जो आपके नेगेटिव बिहेवियर्स थे वो बदल जाएंगे, आप विक्टिम से विक्टर फील करेंगे, आप इलनेस से वेलनेस की मोड में आ जाएंगे, आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस महसूस करेंगे। और जब आप ये महसूस करेंगे उसके साथ साथ आपकी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस इंक्रीज होगी, तो आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आएगी। और देखेंगे कि जब आप ये प्रोग्राम करने के बाद आप पाएंगे कि आपने एक सही डिसीजन लिया था। और अगर आप किसी वजह से ये प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप देखिएगा जो समस्याएं अभी आपकी लाइफ में हैं, जो चैलेंजेस अभी आपकी लाइफ में हैं, वो तो आगे और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि लाइफ तो समस्याओं का ही नाम है। दिन प्रतिदिन कोई ना कोई समस्या आपको ढूंढ ही रही होती है, सुबह उठने से लेकर शाम तक, और ये समस्याएं, ये चैलेंजेस बढ़ते ही जाएंगे, हेल्थ खराब होती जाएगी, वेल्थ और डाउन आएगा, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने चक्रों को एक्टिवेट नहीं किया, अपने ऑरा पे काम नहीं किया, अपने माइंड पे काम नहीं किया। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप महसूस करेंगे कि ये ना करके आपने एक बहुत बड़ी गलती की। आप खुद तो महसूस करेंगे ही करेंगे, कुछ दिनों बाद आपके आसपास वाले लोग भी आपको कहना शुरू करेंगे कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करो, तुम सारा दिन निराश निराश नजर आते हो, डिप्रेस, तुम्हारा ऑरा भी कमजोर हो गया है, तुम्हारा बातचीत करने का स्टाइल ठीक नहीं है और तुम डिसीजंस भी गलत ले रहे हो। लेकिन अगर आपने ये प्रोग्राम अटेंड किया तो आप देखेंगे आपके डिसीजंस बेहतर होते जाएंगे, आपका ऑरा जबरदस्त होते जाएगा, वही लोग जो आपके आसपास हैं वो आपको कहेंगे कि यार तुम क्या कर रहे हो, कुछ बदलाव तुम्हारे अंदर बहुत ही पॉजिटिव आते जा रहे हैं, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्टाइल बढ़ रहा है, तुम्हारी इंट्यूटिव पावर बढ़ रही है, तुम्हारे डिसीजंस मेकिंग बहुत जबरदस्त होते जा रहा है, तुम्हारे चारों तरफ एक ऑरा दिखाई देती है। और इस प्रोग्राम के द्वारा आप खुद की मदद तो करोगे ही करोगे, लेकिन जो आप सीखोगे उससे आप अपने फैमिली मेंबर्स और अपने टीम मेंबर्स को भी ट्रेन कर पाओगे, उनके ऑरा में भी जबरदस्त बदलाव ला पाओगे। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है लाइफ में। मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये जो प्रोग्राम की सेल्स पिच दी इसके अंदर कुछ इस तरीके से प्रोग्रामिंग किया कि पेन वाले हैं तो आपको पेन भी दिखाए, गेन वाले हैं तो गेन भी दिखाया, आप प्रोग्राम्ड बाय सेल्फ हैं उसके लिए भी मैंने कुछ वर्ड्स डाले, प्रोग्राम्ड बाय अदर हैं उसके लिए भी मैंने कुछ वर्ड्स को यूज किया, आप पॉसिबिलिटीज वाले हैं या नेसेसिटी वाले हैं, मैंने दोनों वर्ड्स को इसमें यूज किया। यानी कि आपको अपनी सेल्स पिच इस तरीके से देनी है कि कुछ वर्ड्स आपको पेन वालों के लिए डालने हैं, कुछ गेन वालों के लिए, कुछ सेल्फ वालों के लिए, कुछ अदर्स वालों के लिए, कुछ पॉसिबिलिटीज के लिए, कुछ नेसेसिटीज के लिए। जब आप इस तरीके से डिजाइन करेंगे हो सकता है कि आपको 20 सेंटेंस एक्स्ट्रा बोलने पड़े, लेकिन वो एक्स्ट्रा वर्ड्स एक्स्ट्रा सेंटेंस किसी न किसी प्रोग्राम्ड के व्यक्ति को टच कर रहे होंगे, उसके दिल पे लग रहे होंगे और वो कन्विंस हो जाएगा। तो कन्विंस करने के लिए आपको किसी को ये सारे मेटा प्रोग्राम्स को ध्यान में रखते हुए एक मोटा सा व्यू बनाना है और उसके बाद अपने कम्युनिकेशन को इस तरीके से डिजाइन करना है कि सारे प्रोग्राम्स को लेते हुए आप कम्युनिकेशन करें, जिससे जो जो प्रोग्राम व्यक्ति होगा वो उसको उस प्रोग्राम के कम्युनिकेशन वाली लाइन उसको हिट करेगी और उसकी वजह से वो कन्वर्जन हो जाएगा या कन्विंस हो जाएगा। चाहे कोई प्रोडक्ट सेल करने की बात हो, चाहे कोई आइडिया सेल करने की बात हो, चाहे लोगों को जनरली कन्विंस करवाने की बात हो, हमारा कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन क्रिएट्स क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपकी लाइफ की क्वालिटी आपके कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती है। और कम्युनिकेशन को डिजाइन करने के लिए आपको लोगों की प्रोग्राम को समझना बहुत जरूरी है। पहला प्रोग्राम जो हमने समझा था वो था VA और K, उसके बाद हमने जो इतने सारे प्रोग्राम समझे, इन सारे प्रोग्राम्स को आपको अपने कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड्स में और लैंग्वेज में यूज करना है ताकि वो आपसे कन्विंस हो सके। तो होमवर्क ये है, इस सेशन को सुनने के बाद अपना खुद का प्रोग्राम जाने, अपने आसपास के लोगों का प्रोग्राम जाने, और जानने के साथ साथ अपने खुद के प्रोग्राम्स में बदलाव लाएं और दूसरों के प्रोग्राम को समझकर उनको मदद करें मोटिवेट करने में, मैनिपुलेट करने में नहीं, मोटिवेट करने में, ताकि वो अपने लिए एक बेहतर रास्ता चुन सकें, आपके लिए एक रिसोर्स का काम कर सकें और लोगों के नेगेटिव बिहेवियर से इरिटेट ना होकर उनके लिए रिसोर्स क्रिएट करना सीखें, उन्हें च्वाइसेस क्रिएट करवाना सिखाएं, उनको एक बेहतर विकल्प चूज करना सिखाएं इन मेटा प्रोग्राम की मदद से।